यह आकाशवाणी दिल्ली है। सरकार ने कहा है कि दालों के निजी कारोबार में लिप्त पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए दिल्ली मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चलाई जा रही हैं। यात्रियों को ग्रीष्मकाल के दौरान पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उत्तर रेलवे ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वर्षा होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं अतहर सईद। सरकार ने कहा है कि दिल्ली दालों के निजी कारोबार में लिप्त पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ता मामलों के सचिव निधि करे ने 15 अप्रैल से दाल उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में ये बात कही। दालों के भंडार के विषय में उद्योग जगत से मिली जानकारी और बाजार प्रतिनिधियों से प्राप्त जानकारी की तुलना की गई है ताकि दाल भंडारण पर ऑनलाइन नजर रखी जा सके। सचिव सुश्री निधि खरे ने म्यांमार से दाल आयात करने के संबंध में राजधानी यांगून स्थित भारतीय दूतावास से भी बातचीत की है। ये बातचीत नई विनिमय दरों और म्यांमार में आयातकों द्वारा किए गए भंडारण के मद्देनजर हुई है। भारतीय दूतावास ने बताया कि दोनों देशों के बीच अपनी अपनी मुद्रा में व्यापार को आसान बनाने की व्यवस्था इस वर्ष 25 जनवरी से शुरू की गई है। इस संबंध में म्यांमार के केंद्रीय बैंक ने 26 जनवरी को विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये भुगतान समुद्री और सीमा व्यापार तथा वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार दोनों पर लागू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेमिंग उद्योग से जुड़े 6 शीर्ष लोगों के साथ इस उद्योग की नई गतिविधियों के बारे में विचार विमर्श किया है। श्री मोदी ने बातचीत के दौरान कहा कि वर्तमान सरकार गेमर्स की सृजनात्मकता को पहचान दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर गेमर्स के साथ अपनी बातचीत का वीडियो भी साझा किया है। श्री मोदी ने कहा कि लोगों को इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए और गेमिंग उद्योग को औपचारिक बनाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि ये परिणाम एनटीए की वेबसाइट pgcuet.samarth.ac.in पर उपलब्ध हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव को लेकर आज राजधानी से सटे नोएडा में एक जनसभा को संबोधित किया। हालांकि मौसम खराब होने के कारण श्री शाह जनसभा में नहीं पहुंचे, लेकिन उन्होंने फोन के जरिए सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान श्री शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा सरकार आने के बाद कानून और व्यवस्था बेहतर है। गौरतलब है कि गौतमबुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के मौजूदा सांसद महेश शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। श्री शाह ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 वर्षों में विकास के कई काम किए हैं, साथ ही पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कई कार्य किए हैं। श्री शाह ने भाजपा प्रत्याशी महेश शर्मा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। दिल्ली भाजपा लोकसभा चुनाव प्रभारी ओम प्रकाश धनखड़ ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर राजधानी में कोई भी विकास नहीं करने का आरोप लगाया है। आज नई दिल्ली भाजपा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस के भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करके श्री केजरीवाल की पार्टी राजनीति में आई थी, आज उन्हीं के साथ हाथ मिला रही है। श्री धनखड़ ने कहा कि केजरीवाल जो जेल में हैं, उनके राजनीतिक बयानों से उनके ऊपर लगे आरोपों से छुटकारा नहीं मिलेगा, बल्कि उन्हें न्यायालय में पूछे गए सवालों का जवाब देना होगा। एक सवाल के जवाब में श्री धनखड़ ने कहा कि संविधान बचाने की बात करने वाले आम आदमी पार्टी के नेता ही संविधान के लिए सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि वे जेल से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ घर घर अभियान चला रही है। आप नेता दिलीप पांडे और पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से पार्टी के प्रत्याशी कुलदीप कुमार लोगों के बीच पहुंचे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए दिल्ली मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चलाई जा रही हैं। इस दौरान उत्तर पश्चिमी दिल्ली के मंगोलपुरी क्षेत्र में पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इठाला में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुर क्षेत्र में सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम के तहत जागरूकता लाने के लिए रंगोली प्रतियोगिता और अन्य गतिविधियों का आयोजन किया गया। कार्यालय द्वारा कल दिल्ली के सदर बाजार क्षेत्र में भी विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चलाई गईं, जिसमें मतदाता केंद्र पर महिलाओं के पंजीकरण के लिए शिविर लगाए गए। गुलाबी बाग क्षेत्र में बेघरों के लिए पंजीकरण और जागरूकता शिविर लगाए गए, वहीं युवाओं के लिए भी पंजीकरण शिविर लगाए गए। निर्वाचन कार्यालय के एक अधिकारी के अनुसार इस वर्ष 5 जनवरी को मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद से अब तक पंजीकरण के लिए लगभग 3 लाख आवेदन आए हैं, जिनमें युवा मतदाता भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अगले महीने एक मैराथन दौड़ का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य मतदाताओं में मतदान के प्रति जागरूकता लाना है। उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल ने ग्रीष्मकाल के दौरान रेलवे स्टेशनों पर पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रति संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। दिल्ली मंडल के द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार गर्मी का मौसम देखते हुए रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि रेलवे स्टेशनों पर लगे वाटर कूलर पूरी क्षमता से काम करें। इसके अतिरिक्त प्लेटफार्म पर पेयजल की उपलब्धता रहे, इसके लिए नियमित परीक्षण भी किया जा रहा है। विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि दिल्ली मंडल यात्रियों को आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराने के प्रति संकल्पित है और रेलवे स्टेशनों पर पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बैसाखी की बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कामना की है कि फसल कटाई का यह त्यौहार हर किसी के जीवन में खुशहाली लाए। श्री मोदी ने कहा कि बैसाखी का यह त्यौहार अपनी खूबसूरत परंपराओं के साथ जीने और एकजुटता की भावना को प्रगाढ़ करने का अवसर है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सभी को बैसाखी, पोइला, बैशाख, सतुआन, विशु, जूड़, शीतला और बिहू की शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि ये पर्व सुख और समृद्धि की नई आशाओं के साथ धरती के आंगन में लहलहाती फसल के स्वागत का और नववर्ष के आगमन का है। उन्होंने प्रार्थना की कि हम सभी के दिलों में खुशी और नई उमंग सदैव बनी रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत रत्न डॉ भीमराव आम्बेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक संदेश में राष्ट्रपति ने डॉ आम्बेडकर के आदर्शों को अपनाने और देश के समावेशी विकास के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने को कहा है। राष्ट्रपति ने इस बात पर बल दिया कि बाबा साहेब आम्बेडकर ने एक न्यायविद, शिक्षाविद, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और राजनीतिक नेता के रूप में देश और समाज में असाधारण योगदान दिया। उन्होंने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था में उनका दृढ़ विश्वास आज भी हमारे लोकतंत्र और सुशासन की नींव है। उन्होंने कहा कि डॉ अंबेडकर ने संपूर्ण जीवन समतावादी समाज की स्थापना के लिए समर्पित कर दिया और दलितों के उत्थान के लिए संघर्ष किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जलियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि स्वराज के लिए प्राणों का उत्सर्ग करने वाली सभी महान आत्माओं के प्रति राष्ट्र सदैव ऋणी रहेगा। राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि जलियांवाला बाग के बलिदानियों की देशभक्ति की भावना आने वाली पीढ़ियों को सदा प्रेरित करती रहेगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में देशवासियों से स्वतंत्रता और न्याय के मूल्यों के लिए स्वयं को फिर से समर्पित करने का आग्रह करते हुए कहा कि यही हमारे स्वतंत्रता संघर्ष की नींव थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलियांवाला बाग नरसंहार के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। ये नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था, जब ब्रिटिश जनरल डायर ने पंजाब में अमृतसर के जलियांवाला बाग में निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलवा दी। इस घटना में सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा है कि जलियांवाला बाग अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता और अमानवीयता का जीवंत प्रतीक है। उन्होंने कहा, इस हत्याकांड ने देशवासियों के हृदय में क्रांति की ज्वाला जगा दी और स्वतंत्रता संग्राम को जन जन का संग्राम बना दिया। श्री शाह ने यह भी कहा कि जलियांवाला बाग के सौभानियों के लिए का जीवन राष्ट्र प्रथम के लिए त्याग व समर्पण की प्रेरणा का अक्षय स्रोत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि जलियांवाला बाग नरसंहार ने औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकने के लिए एक दृढ़ संकल्प पैदा किया, जो विकसित भारत के लक्ष्य के रूप में अब भी जारी है। और अब मौसम। राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में आज शाम के समय हल्के से मध्यम वर्षा हुई, जिसकी वजह से मौसम सुहावना रहा और लोगों को गर्मी से भी राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान कुल 1.3 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहते हुए 39.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक रहते हुए 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है। कल का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। आकाशवाणी से बातचीत में वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक आर के जेनामणि ने बताया कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बारिश हुई है।
अभी जैसे एक जो पश्चिम विक्षोभ है वो बिल्कुल एंट्री मार चुका है हमारा उत्तर भारत में, इसके प्रभाव से आज जो है सीवियर थंडरस्टॉर्म हुआ है दिल्ली एनसीआर इलाका में ऑलमोस्ट ऑल प्लेसेस में, और विंड भी काफी स्ट्रांग रहा, लाइटनिंग भी रहा, और उसी के साथ साथ जो तापमान जो टेम्परेचर 39 क्रॉस किया था अभी ऑलमोस्ट 10 डिग्री से ज्यादा फॉल हुआ है, 25 डिग्री आज रिकॉर्ड किया गया 5:30 PM। और अगर बात करें जो उत्तर भारत का बाकी हिस्सा है, काफी इलाका राजस्थान पंजाब हरियाणा में थंडरस्टॉर्म और बारिश हुआ, अभी इसका प्रकोप रहेगा नेक्स्ट 2 डेज तक। और हमारा जो ऑरेंज कलर वार्निंग है, चाहे जो थंडरस्टॉर्म हो, लाइटनिंग हो, और उसके साथ साथ विंड भी स्ट्रांग विंड होने का संभावना है, वो 2 दिन तक रहेगा। वो जो उत्तर भारत का जो प्लेन एरिया है वहाँ होगा, और उसके साथ साथ जो हैवी रेन और हैवी बर्फ गिरने का संभावना है जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में।
सभी पार्टियों के नेताओं ने जलियांवाला बाग नरसंहार के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड एक अन्यायी शासन की क्रूरता का प्रतीक है, जो इतिहास के काले पन्नों में हमेशा दर्ज रहेगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि नरसंहार में अपनी जान गंवाने वाले लोग विश्व को सबके लिए शांतिपूर्ण, समानतापूर्ण और मर्यादित बनाने के लिए प्रयासरत थे और उन्हें सम्मानपूर्वक याद किया जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ था और अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचार ने ऊधम सिंह सहित कई क्रांतिकारियों को जन्म दिया। सरकार ने ग्रीष्मकाल के दौरान देश में बिजली की मांग को पूरा करने के लिए गैस से चलने वाले बिजली संयंत्रों को चालू करने का निर्णय लिया है। गैस चालित केंद्रों से अधिकतम बिजली उत्पादन के लिए सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। ये आदेश अगले महीने की पहली तारीख से 30 जून तक मान्य रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा है कि दालों के निजी कारोबार में लिप्त पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए दिल्ली मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चलाई जा रही हैं। यात्रियों को ग्रीष्मकाल के दौरान पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को लेकर उत्तर रेलवे ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। और दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वर्षा होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।